समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
प्रभात के किरणों में कुछ नई उमंगे हैं, उठो जागो चलो, ये समय की तरंगे हैं। जी हाँ, सुबह की पहली किरण सिर्फ प्रकाश ही नहीं लाती, बल्कि वे अपने साथ नई उम्मीदें, नई तरंगे, नया उत्साह भी लाती हैं। जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा लाती हैं, तो आइए आज कुछ नया सीखें और समय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि समय के साथ आगे बढ़ना ही जिंदगी से कुछ नया लेना और जिंदगी को खुलकर जीना है। इसी के साथ ही आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग आकर्षिता, एंड हेलो देयर लिसनर्स। Yes, Akashita, true joy of living comes when you are at peace with one and all. So the connection with inner harmony can be achieved with a little bit of soul searching and lots of yoga practice or any other form of exercise that one prefers. So friends, begin your morning with few stretches and pick up your coffee or teacup and stay with us throughout this session of Aaj Savere. So we are beginning with some news headlines, Akashita.
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी विकास, बुनियादी ढांचा, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और राजस्व सेवाओं सहित प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और जूनागढ़ जैसे शहरों में आज शहरी विकास की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण 1,000 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना के तीसरे चरण का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1,006 करोड़ रुपए की लागत वाले 22,000 से अधिक घरों का भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में UN मेहता कार्डियोलॉजी संस्थान का उद्घाटन करेंगे और अहमदाबाद में 588 करोड़ रुपए की लागत वाली IPD सुविधा की आधारशिला रखेंगे। वह 17 नगर निगमों के 2,731 करोड़ रुपए और 149 नगर पालिकाओं को 569 करोड़ रुपए के विकास चेक भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात के स्वच्छ वायु कार्यक्रम के साथ साथ शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर।
President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and fields of activities including art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports and civil service. A report.
This year, the government announced 139 Padma Awards, which comprise 7 Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. During the first investiture ceremony, the President conferred Padma Awards to 71 eminent personalities for the year 2025. In the second investiture ceremony, a total of 68 eminent personalities will be honored with Padma Awards. Among them, former Chief Justice of India Jagdish Singh Kehar and Kumudini Rajinikanth Lakhia will be awarded Padma Vibhushan for their contributions in the fields of public affairs and arts respectively. Those who will be presented the Padma Bhushan include Jatin Goswami, Kailash Nath Dixit and Sathavi Ritambhara, while renowned economist Bibek Debroy will be honored posthumously. Among those who will be conferred Padma Shri are Manda Krishna Madiga, Dr. Neeja Bhatla, Santaram Deswal and Sayyid Ahnul Hassan. With Aman Yadav, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 और असम में 2 सीटों के लिए चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। अधिसूचना 2 जून को जारी की जाएगी। मतदान 19 जून को और मतगणना भी उसी दिन होगी।
External Affairs Minister S. Jayashankar has pointed out that terrorist organizations are openly operating from the cities and towns of Pakistan. He said terrorism is an open business in Pakistan that is supported, financed and used by the Pakistan military and the state. In an interview to a German newspaper, Dr. Jayashankar said, India has sent a clear signal to the terrorists that price has to be paid by them for carrying out terrorist attacks. On India's retaliatory attacks after the Pahalgam terror attack, External Affairs Minister said, Indian strike was measured and non-escalating. He said, India showed that India can disable their air defense systems. On the ceasefire between India and Pakistan, Dr. S. Jayashankar highlighted that the cessation of firing was agreed between the military commanders of both sides through direct contact. He said India effectively hit and incapacitated Pakistan's main air bases and air defense system.
विदेश सचिव विक्रम मिसरी आज से 29 मई तक अमेरिका के वॉशिंगटन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे अमेरिका प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस वर्ष फरवरी में प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की थी। दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट यानी सैन्य साझेदारी त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को बढ़ावा देने की पहल शुरू की थी।
Getting on to some sports news now. World Para-Athletics. Indian para-athlete Mahendra Gurjar scripted history by setting a new world record in the men's javelin F42 category at the Nordwil World Para-Athletics Grand Prix in Switzerland yesterday. Gurjar produced a brilliant throw of 61.17 meter to claim the gold medal in the men's javelin F42 category at the event and set a new record en route to his triumph.
IPL T20 क्रिकेट में कल रात जयपुर में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर शीर्ष दो में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा।
Asian Athletics Championships 2025 will begin today at Gumi in South Korea. A 60-member Indian contingent will participate in the 5-day event. Two-time Olympic medalist Neeraj Chopra is skipping the continental event following his participation in the Doha Diamond League and the Janusz Kiszczynski Memorial in Poland over the last 2 weeks. With Neeraj Chopra missing, young gun Sachin Yadav and Yashvir Singh will carry Indian hopes in the men's javelin throw competition.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें और अब चेन्नई बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ है सुभद्रा।
यस आकर्षिता, आई एम स्टार्टिंग विथ न्यूज फ्रॉम चेन्नई। The Railway Protection Force personnel seized approximately 2,000 kilograms of smuggled rice at Chennai Egmore Railway Station in a targeted operation against the illegal transportation of PDS rice. A special drive was conducted on 25th May by a team of police personnel. During the operation, the team identified and confiscated 4 unclaimed bags filled with smuggled PDS rice weighing around 2 metric tons. The rice bags are suspected to have been illegally diverted from the government-subsidized distribution network were found abandoned on the railway premises. Authorities suspect that the smugglers intended to transport the rice using the railway network before the consignment, fearing police surveillance. We have another news from Chennai. Indian Institute of Technology Madras has launched new programs to prepare students for the latest advances in technology and become leaders in industry and academia. These courses have been launched at both the undergraduate and postgraduate levels. It may also be recalled that IIT Madras became the first institute in the country to announce separate admission categories for those excelling in sports and fine arts. The institute introduced Fine Arts and Culture Excellence, that is FACE, admission to undergraduate programs from the academic year 2025-26. The objective is to reward and encourage students who have achieved excellence in fine arts and culture. The admission process through FACE would not be through the Joint Seat Allocation Authority portal, but on a separate portal. The Sports Excellence Admission was introduced from the last academic year. This initiative is to recognize and reward talented students who have excelled in sports. This program encourages deserving students to pursue higher education and while continuing to excel in their sports. Bengaluru News Now, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah reviewed the COVID situation in the state yesterday. In a meeting in the health department and those with expertise about the pandemic, the Chief Minister sought details on the prevailing situation. Saying that there is no need to be alarmed, the Chief Minister instructed the officials to keep the apparatus ready to meet any eventuality. He has directed the officials to keep stock of ventilators, oxygen cylinders, medicines and necessary infrastructure to deal with the situation. He said those with heart problems, aged persons, pregnant women should pay heed to advisory issued by the government on the pandemic. Those with severe acute respiratory infection symptoms such as cough, cold, fever and body pain must avoid coming out in public. Getting to Hyderabad now, the southwest monsoon entered Telangana yesterday, marking a significantly early onset compared to previous years. IMD officials informed that the monsoon has touched parts of 7 districts, including areas in Mehboob Nagar. They informed further that it may take a day or two to cover the entire state if conditions remain favorable. This year, the onset of monsoon is ahead of schedule, which will normally be around the 10th of next month. The Met officials attributed the early arrival to favorable meteorological conditions such as rainfall patterns, wind flow, solar radiation, and moisture transport from surrounding regions. Akarshita, how about the other news now?
और अब खबरें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से। पहले दिल्ली की खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के हैदरपुर, शालामार, सिंघलपुर गांव और अंबेडकर नगर कॉलोनी के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के गांव में पीएनजी की सुविधा से नागरिकों के जीवन में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों के निवासियों को रसोई से निकलने वाले धुएं से राहत मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर घर तक जरूरी सुविधाएं पहुंचे और लोगों का जीवन आसान बन सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कल जिला विकास समिति के नव नियुक्त अध्यक्षों, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलाधिकारियों के साथ दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान राजधानी में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कल दिल्ली औद्योगिक आइडियाथॉन 2025 की घोषणा की। इस आइडियाथॉन का उद्देश्य युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे भविष्य की तकनीकों के साथ आज की औद्योगिक समस्याओं का समाधान कर सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री सिरसा ने कहा कि ये आइडियाथॉन बेहतर आइडिया खोजने और दिल्ली में औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं राजधानी में कोविड-19 के मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। नए वेरिएंट से होने वाले कोविड में अभी तक केवल वायरल बुखार के लक्षण ही दिखे हैं, लेकिन कोविड को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर परामर्श भी जारी किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजधानी में कोविड-19 की यदि कोई स्थिति बनती भी है तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। और अब खबरें मुंबई से। मुंबई में कुछ ही घंटों में 250 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में भीषण जलभराव हो गया और कल सड़क यातायात ठप हो गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई विश्वविद्यालय में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर अध्ययन और शोध केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम मुंबई विश्वविद्यालय के फोर्ट परिसर में स्थित सरकावश्री जहांगीर दीक्षांत समारोह हॉल में दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कैदी कल्याण और पुनर्वास परियोजना को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस के साथ अपनी साझेदारी को नवीनीकृत किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर 2016 में पहली बार शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य कैदियों का पुनर्वास करना और उन्हें कानूनी सहायता, परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के माध्यम से समाज में फिर से शामिल करना है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित यशवंत राव चौहान पंचायती राज अभियान 2023-24 पुरस्कार समारोह आज सुबह 10:30 बजे मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित यशवंत राव चौहान केंद्र में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पुरस्कार प्रदान करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये पुरस्कार 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली उत्कृष्ट पंचायती राज संस्थाओं और मेधावी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाएगा। और अब खबरें कोलकाता से। आज पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। कल से 31 मई तक दक्षिणी पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के तय समय से पहले उत्तर बंगाल में प्रवेश करने की भी संभावना है। और आइए अब जानते हैं महानगरों का मौसम। सबसे पहले दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में गरज और तूफान के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बात करें कोलकाता की तो वहां भी आज आंधी चलने के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
Yes, Akashita, rains are seen everywhere, right?
Ji.
Chennai and Bengaluru will see cloudy skies with light rain. The minimum temperature in Chennai was 27 degrees Celsius. Maximum will be around 34 degrees Celsius. The minimum temperature in Bengaluru was 20 degrees Celsius. Maximum will be around 27 degrees Celsius. And Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with intermittent rain. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास के दिन आज क्या क्या हुआ।
Yes, starting with the year 1660, the Treaty of Copenhagen, signed on this day in 1660 between Sweden and Denmark, Norway, marked the end of a long period of warfare between the two powers in the region. And of course, this treaty helped establish modern boundaries of Denmark, Norway and Sweden, brought stability to the region after years of conflict. And 1703, after winning access to the Baltic Sea through his victories in the Great Northern War, Tsar Peter I founded the city of St. Petersburg as the new Russian capital on this day in 1703. And of course, this date marks the laying of the foundation stone for the Peter and Paul Fortress, a pivotal moment in the city's history. 1909, the Indian Institute of Science in Bangalore was established. And 1921, Afghanistan gained sovereignty after 84 years of British control.
और आज के दिन ही 1930 में न्यूयॉर्क की क्रिसलर बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जो कुछ समय के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। इसकी गुप्त रूप से बनाई गई 185 फुट ऊंची इमारत की ऊंचाई ये सुनिश्चित करती है कि ये प्रतिद्वंदी गगनचुंबी इमारतों से ऊपर हो। लेकिन अगले साल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने ये खिताब अपने नाम कर लिया।
1937, in the Golden Gate Bridge, that is in San Francisco, it was first opened to the public as a pedestrian day. It is one of the most photographed bridge in the world and is instantly recognizable. And one more event I have, this in 1933, during the time of Great Depression, Walt Disney released the animated short film The Three Little Pigs, which featured the song Who's Afraid of the Big Bad Wolf, highlighting fortitude in the face of adversity. Both the cartoon and the song proved highly popular with general public and fans, a welcome change for those who are reeling under the negative effects of the Great Depression.
और आज के दिन ही 1999 में बोत्सवाना की सुंदरी पुलेक्वेला गोब वर्ष 1999 की मिस यूनिवर्स चुनी गई। और आज के दिन ही विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार सोफी पुरस्कार डरमन हेली तथा थॉमस कैरी को प्रदान किया गया था। और आज के दिन ही 2010 में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में बालसोरा जिले में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 मिसाइल धरती से धरती पर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जबकि धनुष पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है। और आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। वे संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए और आज ही पुण्यतिथि है तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी की। वे एक मराठी लेखक थे। उन्हें तर्क तीर्थ अर्थात तर्क का मास्टर की उपाधि दी गई थी। वे वैदिक विद्वान, संस्कृतवादी तथा जाने माने विचारक थे। 1955 में उन्हें उनकी कृति वैदिक संस्कृति चा विकास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।
1909 birth anniversary of William Webster Hansen, American physicist who contributed to the development of radar and is regarded as the founder of microwave technology. And 1922 this day, birth anniversary of Christopher Lee, English actor, known for his film portrayals of villains ranging from Dracula to J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings as Wizard Saruman. Lee's distinctive demeanor secured him several important roles, The Face of Fu Manchu, 1965, The Wicker Man, The Three Musketeers, Tears, the Star Wars and more. And also friends, a genius of the violin, Italian composer Niccolo Paganini, left the world this day in Nice, France at the age of 57. Extremely popular with fans, Paganini experienced great success in Vienna in 1928, and his appearances in Paris and London in 1831 were equally sensational. His violin techniques were later imitated by many classical musicians. Ottapalakkal Neelakandan Velukurup, also called ONV, a Malayalam poet, celebrates his birthday today. He won Gyanpith Award, the highest literary award in India, for the year 2007, and later received a Padma Shri, followed by a Padma Vibhushan in the year 2011. Alongside his poetry, he excelled in writing for films also. First, let's listen to a recitation, an excerpt of his poem, Valaputtukal, rendered in his own voice.
Valaputtukal. തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ ചില തുടച്ചു വാർത്തിയിടുവാൻ ഉച്ചത്തിലലറിക്കൊണ്ടിന്നലെ ഇതേ വഴി മഴക്കാറ്റുപോൽ ചുറ്റി അലഞ്ഞേൻ ചെമ്പൂഴിയിൽ മഴവെള്ളം പോൽ എന്റെ ശബ്ദവുമൊലിച്ചുപോയി തച്ചുടയ്ക്കുവാൻ ചില തുടച്ചു വാർത്തിയിടുവാൻ ഉച്ചത്തിലലറിക്കൊണ്ടിന്നലെ ഇതേ വഴി മഴക്കാറ്റുപോൽ ചുറ്റി അലഞ്ഞേൻ।
ओट्टापलक्कल नीलकंठन वेलुकुरूप को वर्ष 1989 में फिल्म वैशाली के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। आइए सुनते हैं उनका ये गीत। उन्हें साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं थी मरुभूमि, अक्षरम, मृगया, उज्जैनी आदि। और आज ही भारतीय मराठी लेखक, उपन्यासकार, कवि, समीक्षक तथा शिक्षाविद भालचंद्र निमाडे का जन्मदिन है। भालचंद्र निमाडे के हिंदू, झूल, बिढ़ार, कोसला आदि उपन्यास बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें 2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
Founder member, guitarist, pianist Greg Allman of the Allman Brothers Band left us this day after a battle with liver cancer. This southern rock pioneer fused country blues with San Francisco style, extended improvisation, creating a template for countless jam bands that are still around. Some beautiful strumming, a soulful acoustic beauty with Greg's soothing, warm vocals. Let's listen to this track, man, Sweet Melissa. Here goes.
Come and go, yeah.
आज अभिनेत्री आशा सचदेव का जन्मदिन है। 1970 और 1980 के दशक की एक प्रमुख हिंदी फिल्म अभिनेत्री थी वो, और उनका जन्म नाम नफीसा सुल्तान था। आशा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1972 में फिल्म डबल क्रॉस से की थी। उन्होंने हिफाजत में मुख्य भूमिका निभाई जिसमें उनके अभिनय और गीतों को सराहा गया। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
He was called the gentle giant for the way he sang his songs, his straightforward yet smooth bass baritone voice, soft tones, imposing build, earned him the nickname Don Williams. Country legend took birth this day in 1939. A song to remember this gentle giant, I Believe in You.
Superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing old, that right is right and left is wrong, that north and south can't get along, that east is east and west is west, and being first is always best. But I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. And I believe in you. Well, I don't believe that heaven waits for only those who congregate. I like to think of God as love. He's down below, he's up above.
And friends, Ravi Shastri, the most prolific all-rounder of the Indian cricket team, celebrates his birthday today. Though he played 80 tests, Shastri was just 30 when he appeared in his last match. And of course, he played in the Indian team that became the first to win the World Cup in 1983.
इन्होंने बतौर क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 1981 से 1992 तक टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। रवि शास्त्री ने अपने क्रिकेट करियर में धीमी गति के गेंदबाज और बल्लेबाज की भूमिका निभाई, इस कारण उन्हें एक ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता है। वे 2017 से 2021 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे।
And friends, today is the birth anniversary of Ramsey Lewis. He's been an iconic leader in the contemporary jazz movement for over 50 years, with an unforgettable sound and outgoing personality that has allowed him to cross over to the pop and R&B charts. Of course, Lewis earned his first gold record as well as a Grammy Award for Best Jazz Performance for the swinging version of Dobie Gray's hit In the Crowd.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, लेकिन उससे पहले हम सुनना चाहते हैं जो अभी वायलिन हमने सुना है ना सुभद्रा?
Yes, of course.
That
Niccolo
was so beautiful.
Yes, you loved it, huh? That's Niccolo Paganini.
तो श्रोताओं, अब अनुमति दीजिए आकर्षिता और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।